તારીખ 30/4/1988 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 250 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રહમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1
50 સાલ પહેલે કહે કે હમ બચપન મે યહાં કે થે યે હમારા છોટા સા ગામ બગલ મે મંદિર થા ઓ થા ઓ થા હમારા યે મિત્ર થે હમારા યે પડોશી ઓર પૂછે કે આપ આજ સે 5 દિન પહેલે જો ઇતવાર ગયા ઉસને કોણ સી સબ્જી ખાઈ યાદ મે નહીં આતા હૈ કે રવિવાર કો કોણ સી સબ્જી ખાયા થા 50 સાલ પહેલે કે તો સ્મૃતિ રહેતી હૈ પર 5 દિન પહેલે કી સ્મૃતિ નહીં રહેતી 5 ઘંટે પહેલે કી ભી નહીં રહેતી એસી યે બહોત કમજોર ચીજ હૈ યે પરપદાર્થ વિષય હૈ લેકિન જિસ મતિ શ્રુત કી ધારણા મે ધારણ કિયા જિસકો ઉસકો ધારણા કહેતે હૈ અપને પરમેશ્વર પદ કો જિસને ધારણ કિયા और कैसे धारण किया कि निर्विकल्प अतिंद्रिय अवस्था से धारण किया निर्विकल्प अतिंद्रिय पदार्थ का मैं यही हूं बस इतनी बात है इतना रस आया इतनी महिमा आई अवस्था जैसा पदार्थ है सदृश रूप धारण करके वैसे के वैसे स्व आकार रूप परिणम गई इसकी जड़ इतनी ऊंडी जाती है अनंत काल तक वो छूटती नहीं दूसरे भव का तो सवाल नहीं तीसरे भव का सवाल नहीं लेकिन अनंत काल तक वो छूटती नहीं भगवान कहते हैं कि एक दफे जिसने सम्यक दर्शन पा लिया अगर वो सम्यक से च्युत हो जाएगा तो भी मर्यादित काल में ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के पहले पहले फिर यही दशा में आ जाएगा और ये परिपूर्ण दशा को प्राप्त करके मुक्ति में चला जाएगा मुक्ति में जाने के लिए इसके पास अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं है और इसके पहले ज्यादा से ज्यादा इसके पहले किसी भी काल में सम्यक दर्शन हो सकता है कम से कम 6 महीना और इसके पहले कितने ही काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन के कोई भी काल में उसको सुनने को दर्शन हो सकता है अनुभव हो सकता है जो दोबारा होता है सादी सम्य दृष्टि वो होता है तो अनादि नहीं रहा क्या हुआ ये कि ये जो प्रथम अनुभव हुआ सम्यक उपशम सम्यक दर्शन के काल में प्रथम उपशम के काल में उसकी चोट इतनी गहरी थी उसकी जड़ इतनी गहरी थी कि वो आगामी काल में सदा ही इससे दूर हो जाए ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं श्रीमद जी उसको कहते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि च्युत होकर के दोबारा सम्यक दृष्टि हुआ होता ही है वो उससे वंचित रह ही नहीं सकता नियम से होता है उसका यही कारण है कि उसका संस्कार उसमें हो गया है प्रथम अनुभव के काल में जो आत्मा स्वभाव का संस्कार है वो संस्कार उसमें हो गया है ये गहरी बात है संस्कार के बाद बहुत गहरी है संस्कार क्या चीज है कहाँ रहता है ये आत्मा में रहता है आत्मा में रहने की जगह है अपनी जगह में रहता है और वो छोड़ता नहीं इस आत्मा को आत्म स्वभाव के संस्कार आत्मा को छोड़ता नहीं है उसको कहीं सुख का स्वाद ऐसा नहीं आता कि वो अनंत काल तक वहां ही लगा रहे सामान्य मिथ्या दृष्टि संसारों में संसारियों की तरह रहता ही नहीं उसको तृप्ति अतृप्ति रूप ही रहती है, उसको तृप्ति होती ही नहीं, अतृप्ति रूप ही होती है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसका निषेध ही उसको अंतर में से आता रहता है। अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से संस्कार से नहीं, वो शांति नहीं पाता है, तो फिर वो प्रार्थना ढूंढने को जाता है। फिर उसको ऐसा लग जाता है कि कहीं आत्म शांति या चीर शांति, स्वभाव की शांति मुझे चाहिए, और वो कहाँ मिलती होगी, कैसे मिलती होगी, इसकी खोज फिर और चलती है। अपनी चीज खो गई है उसको फिर वो खोजने को मिलता है, तो थोड़ा भी उसको नहीं मिलता है। सत शास्त्र में से या कभी वेदना में से या कभी जिन दर्शन से, जिन प्रतिमा की स्थापना ही सी, ये परमात्मा स्वरूप को, स्वभाव स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली चीज है जो बहुत अच्छी तरह आत्मस्वरूप को प्रदर्शित करती है, भगवान की प्रतिमा। अरिहंत पद की जो प्रतिमा है, नाम थाम का तो कोई विषय इसमें नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अनामी है, नाम तो लिए जाते हैं अपेक्षावश, किसी पर्याय की अपेक्षावश लिए जाते हैं। लेकिन ये जो अरिहंत पद की स्थापना की मूल मार्ग में परंपरा रही, इसका यही कारण है कि यहाँ से कईयों कई संस्कारी जीवों को, बहुत से संस्कारी जीवों को सम्यक दर्शन और अनुभव होने की प्रेरणा मिली है, मिली है, मिलती रहेगी। और जिसको अनुभव है उसको तो और अपने स्वसंवेदन को स्मरण में ला करके अपने स्वभाव को आविर्भाव करने का एक और अच्छा सा अच्छा, बढ़िया से बढ़िया निमित्त मिलता है। ये इसका पारमार्थिक पहलू है। जिन प्रतिमा की स्थापना के पीछे कोई पारमार्थिक पहलू है तो यह है कि ये स्वभाव को प्रदर्शित करती है। हरेक चीज के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे ये वाणी है, ये कर्णेन्द्रिय का विषय रहा है, और जो शास्त्र है उसको चक्षु इंद्रिय से शब्द को पढ़ करके फिर मुख्य तौर से मन का विषय रहा, और भगवान की प्रतिमा चक्षु इंद्रिय का विषय रहा। ठीक है, अपने अपने स्थान में अपने इसकी गुण जो है वो उसकी विशिष्टता है, इसकी स्पेशलिटी है। किस प्रकार है कि जैसे एक बालक को वाणी से समझाया जाए कि गुलाब होता है, उसका जो रंग है, वर्ण है, वो गुलाबी होता है, क्या समझेगा? जिस बालक ने गुलाब का फूल देखा नहीं, इसका चित्र भी नहीं देखा, इसको गुलाब का विषय समझाता है इनका शिक्षक, क्लास में बिठा करके, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा हो, इसने कभी गुलाब नहीं देखा, उसको यदि बच्चा ये गुलाब का कलर जो है, वर्ण है, वो गुलाबी होता है, गुलाबी मैंने कैसा, तो उसका जो प्राध्यापक है वो कहेगा गुलाबी मैंने गुलाबी, क्या कहेंगे, गुलाबी मैंने कैसा कि गुलाबी मैंने गुलाबी, समझ में नहीं आता है। फिर वो फूल कैसा होता है, क्योंकि गुलाब का फूल दूसरा फूल दूसरे तरह का होता है, फिर गुलाब का फूल कैसा होता है, तो वो जैसा गुलाब होता है वैसा ही होता है, क्या समझेगा? कितनी भी लंबी चौड़ी बात करे बजाय इसके उसको दिखा दे तो एक सेकंड में उसको चक्षु इंद्रिय से पता चलेगा कि गुलाब का फूल ऐसा होता है और गुलाबी रंग भी ऐसा होता है, फिर वो भूलेगा। थियोरिटिकल ज्ञान से पता नहीं चलता है, उतना प्रैक्टिकल ज्ञान से पता चलता है। ये इस दृष्टांत का सारांश है कि भगवान की प्रतिमा की स्थापना में स्थापने वाले जो विचिक्षण साधक थे, मैंने आचार्यों ने इस स्थापना के विधि कोई विधि की रचना की है, कहीं आचार्य ने इस विधि की रचना की है। ये तो निर्विकल दशा में रहने वाले महात्मा थे, आचार्य लोग तो निर्विकल स्वरूप में निर्विकल रहने वाले थे, फिर भी उनको ये विकल्प आया है। संसार के दुखी प्राणियों की प्रति करुणा ही है कि ऐसी जो शांत मूर्ति है भीतर में, उसकी झलक कहाँ है? कि उसकी झलक है देहाकार जो पर्यंत पद है उसमें पूरी की पूरी उसकी झलक है। ठीक इसकी प्रतिमा बना करके इसके बिंब रूप, जिन बिंब कहते हैं, जैसा दिन होते हैं इसका वैसा का वैसा बिंब बना करके उसकी अगर स्थापना की जाए, तो जैसे बालक को ये पता चलता है कि ऐसा गुलाब है, वैसा भगवान आत्मा ऐसा होता है, ऐसा कहीं अज्ञानी बालक को ज्ञान होने में बहुत सुंदर। मैंने वाणी में इतना नहीं आवे, इतना इसमें दिखने में आता है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान का विषय है, वाणी है वो थ्योरेटिकल ज्ञान का विषय। इसके भी कुछ बहुत अच्छे पहलू है, लेकिन वो अपने स्पेशल पहलू है और ये अपने स्पेशल है। थ्योरी की अपेक्षा, थ्योरी मैंने व्याख्या डेफिनेशन जिसको कहते हैं, ये वाणी का खान है, उसमें बहुत सी लंबी छोटी बात आ सकती है, इनके भी अपनी विशेषता है। लेकिन जो विशेषता इसमें है वो विशेषता इसमें नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं, अपनी अपनी विशेषता विशेषता रखते हैं। तो ऐसे परमास को देखकर हमारे संप्रदाय में ये बात जो चली है, इसको पारमार्थिक दृष्टिकोण से हमें समझना बहुत अच्छा रहता है, फिर भगवान के दर्शन करने में दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जब जब दर्शन करेंगे तो अपना स्वसंवेदन को सीधा ही यहाँ से यहाँ लेकर ले जाएंगे दर्शन करने वाले। ये कोई ऐसी चीज नहीं अन्य पद की तरह कि विद्राग के सामने खड़ा रहने और संसार के कुछ पदार्थ की अभिलाषा रखे, मांग करें। इस विषय में तो एक हास्यास्पद दृष्टांत है, थोड़ा दृष्टांत तो गंभीर नहीं है, अगंभीर है, फिर भी समझने लायक है थोड़ा, कि किसी चक्रवर्ती की किसी मामूली कम बुद्धि वाले आदमी ने जान बचा ली। वो ले आए अपने राज में, ले आए तो क्या हुआ, तो उस पर बहुत खुशी हो गया कि तू अगर मांगता है तो कुछ दिनों के लिए, जितने दिन के लिए तुझे मेरा राज चाहिए तो मैं मेरा सिंहासन तुझको बिठा देता हूँ। जान से ज्यादा कौन सी चीज हो सकती है? लेकिन वो मांगने वाले को बुद्धि नहीं थी, बहुत कम अक्कल था। उसने बोला कि मेरे जूते फट गए ना, इसको सिलाई करवा दो। क्या मांगा उसने? मेरे जूते फट गए हैं, उसको सिलाई करवाना जरूरी है, वरना वो चलने में अच्छा नहीं रहता है। तो उसने क्या मांगा? ऐसे वीतराग जो है परमेश्वर है, अरिहंत है, भगवान के सामने खड़ा रह करके भगवान कहते कि मेरी पद मेरा पद है ऐसा तेरा पद है मांग ले तो उस गद्दी पे विराजमान नहीं होता है और मांगता है कि मुझे पैसा दे दो, मुझे अच्छे कमाई दे दो, मेरा टर्नओवर बढ़ा दो दुकान पे, या मेरे शरीर से रोग निकाल दो, या बच्चा दे दो या बच्ची दे दो। ये ऐसा कम अक्कल है तो उसको मांगने को भी नहीं आता है, ऐसी बात है, मांगने को भी नहीं आता, इतना कम अक्कल है। ये बात है जो हमेशा हम भगवान के दर्शन करते हैं इस विषय में बहुत पारमार्थिक विषय है, ये रूढ़ी का विषय नहीं, रिवाज का विषय नहीं, और यांत्रिक पद्धति से हमेशा कर ले और चल जाना है, जल्दी जल्दी दुकान जाना होता है, काम बहुत से होते हैं, मंदिर बीच में आ जाता है, अच्छा है कि जगह जगह पे मंदिर रखते हैं, बीच में पूरे हाथ जोड़े नहीं जोड़े ध्यान तो वहाँ ही जहाँ पहुँचना है और चल दिए, इतना रखा है कि अगर मंदिर में दर्शन करके नहीं जाएंगे कहीं व्यापार में थोड़ा आ गया शंका हो जाएगी, मंदिर के दर्शन चुक जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, नुकसान नहीं हुआ इसलिए तो कम से कम कर ले। ये भिखारी मांगने को भी नहीं जानता है, भीख तो मांगता है भिखारी लेकिन मांगने को भी नहीं जानता है। यहाँ तो कहते हैं कि अपने परमेश्वर पद में इतने जोर से इस विषय के प्रति अंतर्मुख हो कि बाह्य में सुख दुख के किसी भी प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो जाए, इसकी उपेक्षा हो जाए, छद्मस्थ जीव के परिणाम में एक की अपेक्षा में इसके विरुद्ध दूसरे विषय की उपेक्षा हो जाया करते हैं, करनी नहीं पड़ते हो जाया करते हैं। तो जब अपने निज परमात्मा की अपेक्षा हुई बाहर के सुख दुख की, सहज रूप से उपेक्षा हो जाएगी, उसको करो ऐसा आदेशात्मक वचन पद्धति में कहने में आता है, लेकिन ये सहज होते रहते हैं। मैं तो यही हूं ऐसे घूंटन में, ऐसे मंथन में, ऐसे चिंतन में कुछ विकल्प विचार चले उसकी भी गौणता रखो, मैंने सहज ही निर्विकल्प स्वरूप के घूंटन में विचार जो भी हुए ये भी गौण हो जाना चाहिए। इसलिए ये बात कही है कि कहीं आत्मा के विचार करने वाले मोक्ष को इसकी मुख्यता हो जाती है कि मैंने तो आत्मा का इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार विचार किया, मैंने ऐसे विकल्प किए, मैंने ऐसे विकल्प किए, मैंने ऐसे विकल्प किए, ये मुख्य नहीं होना चाहिए, ये भी गौण हो जाना चाहिए। जब आत्मस्वरूप के विचार गौण होवे तो दूसरे विचार के लिए तो कहना ही क्या, ये तो सहज रूप से गौण हो जाना चाहिए। जब आत्मविचार ही जिसको गौण रहता है तो दूसरे विचार तो मुख्य नहीं होता है, तो दूसरे विचार के विषय बुद्ध जो अनुकूलता प्रतिकूलता है इसमें तो पकड़ आएगी ही कहां से कि जैसा हो वैसा हो चला लेता है, जैसा भी उदय हो वैसे ही संयोग वियोग सामने आ जाएंगे, ये तो पूर्व कर्म कृत है, उदय में आने वाले चीज को, संयोग वियोग को, किसी भी प्रकार के हो, उसको मिटाने के लिए इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है। जो उदय में आ चुके, जो अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ होता है, संकर्षण होता है, ये तो सत्ता में होने वाले को होता है, उदय में आने वाले को नहीं। उदयावली में आ जाते फिर भी नहीं। उदयावली मैंने उदय के पहले कुछ समय के, जिसकी जो मर्यादा है काल की, इसमें फिर कोई फेरफार नहीं है। तो जो भी हुआ सो, ऐसा क्यों हुआ, ये बात उसको रहने वाली। मैंने तीव्र कषाय रस कहीं होगा ही नहीं। कषाय रस जब तीव्र नहीं होगा तो इसका जो, इसका अविनाभावी रूप से जो दर्शन मोह का रस है, वो भी फिर बड़े बढ़ने वाला नहीं है। वो भी गलते जाएगा, ये भी मंद होते जाएगा, इतना मंद होगा कि उपशम की मर्यादा में हुआ जाएगा, उपशम होने की मर्यादा में आ जाएगा। इसलिए उसकी भी गौणता रखो। मैं तो वैसा का वैसा ही चैतन्य मूर्ति हूं, बस यही दृढ़ता करते रहो। ये अस्थि से लिया है, मैं तो वैसा का वैसा ही चैतन्य मूर्ति हूं, बस यही दृढ़ता करते रहो। बात तो बहुत लंबी छोड़ी नहीं है, फिर भी इसमें रस इतना पड़ा है कि यहां से निकल नहीं सकते। बात तो बहुत बाकी रह जाएगी कल के लिए, लेकिन ये 5-7 मिनट में भी ये लगता है कि ये बात ऐसी कहते हैं कहने वाले कि बस यही दृढ़ता करते रहो अपने रस से। विचार विकल्प को तो गौण करके रस हमेशा निर्विकल रहा। कि निर्विकलता के विषय में लोग ऐसा समझते हैं कि ये कोई देश प्रदेश की कहां की चीज यहाँ बता रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रही है क्या निर्विकलता क्या होती है। देखिए तेरे परिणाम में, किसी भी विषय के विषय में जीव का रस भले ही विकल्प के साथ चलता हो, लेकिन विकल्प में रस नहीं, रस में विकल्प नहीं। रस तो निर्विकल्प परिणति होती है, निर्विकलता को नहीं। ये तो प्रत्येक रूप में तेरे में दिखने में आती है। अपने चैतन्य मूर्ति के रस में ऐसे दृढ़ रहो, ऐसे जमे रहो, इसके पीछे इस रस से ऐसे लगे रहो कि और सबकी गौणता ही जाए, इसके रस में और सब गौण ही होता रहे। किसी भी बात की, किसी भी विकल्प की मुख्यता नहीं हो। इस हालात में फिर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है कि आत्मा को अपने अंतर्मुख जाने में कहीं भी प्रतिबंध आ जाए। जिस ज्ञान में, जिस श्रद्धा में चैतन्य मूर्ति को टांकी है, टांक दी है, फिर इसका ही रस लेते रहे, फिर क्या इसमें तकलीफ है, कौन सी आपत्ति आ सकती है इसमें। बाह्य पदार्थ में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहां किसी भी पदार्थ की पहुंच होए। ये ऐसा अंतरंग में रस होता है पैदा कि जिससे किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता की पहुंच वहां होती नहीं। न अनुकूलता उसको बिगाड़ सकती है, न प्रतिकूलता उसको छुड़ा सकती है, क्योंकि कहीं रस ही नहीं है। न अनुकूलता को अनुकूलता के रूप में देखी जाती है, न प्रतिकूलता को प्रतिकूलता के रूप में। वैसे चैतन्य मूर्ति तो ज्ञाता दृष्टा है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा के रस में ही उसकी जमावट रहती है, सब बात खत्म। एक भी बात वहां प्रतिबंध के रूप में सामने नहीं आ सकती। ऐसे मुमुक्षु कभी अपने निज कार्य में स्वयं के प्रयोजन में कभी निष्फल नहीं जाते, कभी फेल नहीं होते, क्योंकि वहां अवसर ही नहीं है, कोई अवकाश ही नहीं है निष्फल होने का। ऐसी एक बहुत सुंदर बात यानी उपाय मार्ग दिखला दिया है इन चार पांच पंक्ति में, ये बात बता दी है। बहुत सुंदर बात आई है यहाँ पर। आगे कहते हैं कि सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सबों की गौणता होनी चाहिए। देखिए, दूसरे की टिप्पणी के सवाल नहीं है। कोई पूजा में लगे रहते हैं, कोई उपवास में लगे रहते हैं, कोई जप करने में लगे रहते हैं, कोई यात्रा की भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते। जो मुमुक्षु अपने यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं जा जाकर के यही प्रवृत्ति में लगे रहे हैं, उनके लिए कहते हैं सुधार तो हमारी करनी है। दूसरे से, दूसरे की देखने से तो हमारी बिगड़ती है, हम क्यों दूसरों के देखें। ये तो एक इसलिए समझने का विषय है कि हमारा ऐसा हाल नहीं हो जाए, इतनी बात है। लेकिन जो प्रवृत्ति हम करते हैं शास्त्र पढ़ने की, शास्त्र सुनने की, इसकी भी मुख्यता नहीं होना चाहिए। ये प्रवृत्ति की मुख्यता नहीं होनी चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति की पकड़ मनुष्यों को कभी होती, सच्चे मनुष्यों को नहीं होती। इन सबकी गौणता होनी चाहिए और एकांत में अपने स्वरूप में मैं यही हूं, इसका रस जमाने का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। क्या कहा, रस जमाने का अभ्यास। बहुत मीठी मीठी बातें आती हैं। सुनना, शास्त्र पढ़ना में इतना कार्य नहीं होता जितना एकांत में अपने स्वरूप को रस की पूर्ति का जो कार्य हो सकता है, उतना पढ़ने में और सुनने में नहीं होता। एकांत वो एकांत है और दूसरे का जो संयोग है वो दूसरे का संयोग। मैं दो चार मिलने से जो आवाज होती है वो एकांत में नहीं है, कहीं और जगह ध्यान देने का सवाल ही नहीं है। ये बहुत अनूठा विषय रहा एकांत का, जिसको इसका अभ्यास हुए उसको तो जैसे कैसे भी इस अमृत पिंड को ग्रहण करने का, जहां से अमृत धारा छूती है, ये चुहा होता है ना, चौमासे में ये चुहा होता है छलने से, पानी तो चार घंटे पहले बंद हो गया और लेकिन चुहा नहीं बंद होता है, छूता ही रहता है ये तो। वैसे ये अमृत का पिंड आत्मा है, उसमें अमृत की जो धार है वो आती ही रहती है, एकांत के अभ्यास में बहुत ठीक रहती है। इसलिए उन्होंने यहाँ एक संकेत कर दिया है कि शास्त्र पढ़ना सुनना आदि में, शास्त्र में तो होता है आध्यात्मिक विषय होता है, भले ही आध्यात्मिक विषय हो, लेकिन इसके आगे भी कुछ करने की चीज है, वो यह है एकांत में बैठ करके अपने स्वयं के स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा रस लेने का प्रयास होना, अभ्यास होना। यही है इससे आगे की एक बहुत सुंदर चीज है।
शिक्षक के दूसरों से हम जरूर राम मंगाला आसना की प्राप्ति कर सकें। अक्सर चार दर्शन भाई की भी बाकी है, सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि प्रश्न में बहुत सूक्ष्म कर रहे हैं और अधिक से अधिक लाभ में ऐसी भावना है। कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, शाम को जो प्रश्न है वो 8 से 9 तक रहेंगे और 9 से 10 तक कमेंट पर आ के रहेंगे। और कल का थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि सत्र चर्चा का समय जो 3 से 4 तक का था तो 2 से 3 तक है, 5 दिन पर जाना है 4 बजे गाड़ी से तो 2 से 3 तक का चर्चा का समय रहेगा और 3 से 7 बजे चलेगी। दूसरी सूचना ये देनी है कि पंडित कैलाश में आए हुए हैं उनकी 8 तारीख तक चलेगी, आपको जो टाइम हो बता दिया जाएगा। 5 तारीख तक मिला देने की है ये आपको
चैतन्य स्वभाव अनादि सिद्ध
नित्य उन्नीत रूप है। अपना चैतन्य स्वभाव अनादि सिद्ध नित्य उन्नीत रूप है, सदा ही चैतन्य स्वभाव से निरंतर अनुभव में आने वाली चीज है अपनी स्वयं की। समय सार के 50 गाथा का एक पैराग्राफ इस विषय में बहुत सुंदर है, जो अलिंग्रहण की गाथा है। उस गाथा में चैतन्य स्वभावी आत्मा है, इस चैतन्य गुण वाला आत्मा कैसे अनुभव में आता है उस पर भगवान अमृत चंद्राचार्य का बहुत सुंदर विवरण है।